चाहत को ओबेरॉय की पार्टी से निकलवाने के बाद आहान उसे मुंबई की सड़कों पर ढूंढ रहा था। चाहत बस स्टॉप पर खड़ी बस के आने का वेट कर रही थी। आहान को चाहत नहीं मिली तो उसने मोंटी को कॉल किया। आहान का कॉल देखते ही मोंटी समझ गया कि जरूर उसने चाहत के बारे में पूछने के लिए कॉल किया होगा। मोंटी चाहत से थोड़ी दूर खड़ा था और उसकी नज़रें एक सेकंड के लिए भी चाहत से इधर उधर नहीं हुई। आहान का कॉल पिक करते ही मोंटी बोला, मैम यहाँ बस का वेट कर रही हैं। कौन से स्टॉप पर, आहान ने पूछा। चाहत का पता चलने पर उसने कुछ हद तक राहत की सांस ली। वेस्ट में हूँ, रात काफ़ी हो गई थी तो मैंने उन्हें अकेले छोड़ना सही नहीं समझा। मैंने पता किया है, बस अगले 10 मिनट में पहुँच जाएगी। आप बेफिक्र रहिए, इन्हें घर छोड़ने के बाद ही मैं घर जाऊँगा, मोंटी ने जवाब दिया। वो अपना काम बखूबी कर रहा था। मोंटी के बताते ही आहान ने अपनी लोकेशन चेक की। वो स्टॉप से लगभग 15 मिनट की दूरी पर था। उसने मोंटी से कहा, मैं 10 मिनट में वहां पहुंचता हूँ, डॉल बस में नहीं बैठनी चाहिए। जी सर, मोंटी ने हामी भरी। आहान ने जल्दी से कॉल कट किया और मोंटी की बताई लोकेशन पर लगभग 7 मिनट में पहुंच गया। उसकी गाड़ी देखते ही मोंटी वहां से निकल गया। आहान गाड़ी से बाहर निकला, उसने देखा चाहत नीचे सिर करके बैठी थी। उसका चेहरा रोने से लाल हो गया, हालांकि अब वो रो नहीं रही थी। आहान धीरे से चाहत के पास जाकर बैठ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, रोहित सूरी की इमेज अच्छी नहीं है। वो अपने यहाँ काम करने वाली लड़कियों को अपने VIP क्लाइंट्स के पास भेजता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स मिल सकें। इतनी समझदार तो तुम भी हो, तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि वो उन्हें अपने क्लाइंट्स के पास क्यों भेजता होगा। आहान ने सीधे सीधे सारा सच बता दिया। आहान की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए चाहत चौंक गई। फिर उसने आहान के चेहरे की तरफ देखा और जवाब में कहा, अगर वो मुझे कहीं भेजता तो मैं मना कर देती। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद संभाल लेती। पार्टी में आपने ही मुझे पैर लगाकर गिराया था ना आहान? चाहत के मुंह से अपना नाम सुनकर आहान के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपने चेहरे के भावों को नॉर्मल किया और कहा, तुम दिखने में जितनी खूबसूरत हो उतनी ही मासूम भी हो। ऐसे लोग अपना काम निकलवाना अच्छे से जानते हैं। वो तुम्हें भोके से वहां भेज देता तो फिर क्या करती? चाहत के पास आहान को बातों का कोई जवाब नहीं था। उसने तो कभी सेल्फ डिफेंस तक की ट्रेनिंग नहीं ली थी। आहान की बातें सुनने के बाद चाहत के दिल में फिर से दुनिया के सभी मर्दों के लिए नफरत की आग जलने लगी। चाहत ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और आहान की तरफ देखकर कहा, थैंक्स मिस्टर ओबेरॉय, जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। फिर भी मुझे आपका तरीका नहीं पसंद आया। आपकी वजह से पार्टी में सबके सामने उस आदमी ने घसीट कर बाहर निकाला। मुझे उस टाइम कैसा लग रहा था आपको तो आइडिया भी नहीं होगा। चाहत आहान के सामने कुछ ज्यादा ही मैच्योरली बिहेव कर रही थी। उसके दिल में जो भी था उसने आहान को बता दिया। चाहत की बातों से आहान को भी गुस्सा आने लगा। रोहित सूरी ने वाकई बहुत बुरे तरीके से चाहत को पार्टी से निकाला था। कुछ पल रुकने के बाद फिर आहान बोला, मेरे तरीके भले ही गलत हों डॉल, पर इरादे अच्छे होते हैं। आहान ने भौहें उठाकर कहा। चाहत के मुंह से खुद के लिए डॉल सुनकर चाहत ने अजीब सा मुंह बनाया। अचानक उसकी सारी मैच्योरिटी धरी की धरी रह गई। डॉल? आप मुझे डॉल बुलाना बंद करेंगे आहान? मैं इंसान हूँ, ना कि कोई डॉल, चाहत बेंच पर से खड़ी होकर बोली। ऐसा करते हुए वो कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही थी। आहान भी खड़ा हो गया। उसने जवाब में कहा, मैंने कहा ना, मेरे तरीके कुछ लोगों को पसंद नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हों। तुम खुद को देखो एक बार, मेरी नज़रों से तुम बिल्कुल किसी डॉल की तरह लगती हो। मैंने कब कहा कि तुम इंसान नहीं हो? तुम इंसान हो जो एक डॉल की तरह लगती है। आहान पहली बार किसी से इतना ज्यादा वो भी एक साथ बोला था। ओके, फिर भी आप मुझे डॉल नहीं बुलाओगे, चाहत बोली। आहान को आगे कुछ कहने का मौका नहीं मिला। उसने देखा चाहत की बस आ गई है। बस में पहले से काफ़ी भीड़ थी और रात का टाइम होने की वजह से मेल पैसेंजर ज़्यादा थे। चाहत बस में बैठने को हुई तभी आहान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं ड्रॉप कर दूंगा और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। चाहत ने उसकी बात पर हामी भरी। इस बार उसने भी बहस नहीं की क्योंकि बस में वाकई काफ़ी भीड़ थी। आहान ने चाहत को अपनी गाड़ी के पास आने का इशारा किया और खुद आगे आगे चलने लगा। आहान ने चाहत के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। चाहत अंदर आकर बैठ गई। आहान फिर ड्राइविंग सीट पर आया और चाहत को उसके घर ले जाने लगा। रास्ते में आहान ने चाहत से पूछा, तो क्या सोचा है तुमने मेरे पास आने के बारे में? कुछ भी नहीं, मैंने आपको बता तो दिया कि मुझे जॉब मिल गई है, फिर क्या ज़रूरत है मुझे आपके पास आने की, चाहत ने जवाब दिया। आहान ने आगे कहा, और कौन सी जॉब? मेरी वजह से दूसरी बार तुम्हारी जॉब चली गई। ऐसा करना, कल मेरे ऑफिस आ जाना। वैसे भी मैंने तुम्हें 3 दिन का टाइम दिया था, उसमें बस 1 दिन बचा है। तुम्हें टाइम बीतने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कल आ जाना। और अगर मैं नहीं आई तो? चाहत ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। गाड़ी चला रहे आहान के चेहरे के भाव अचानक बदलने लगे। उसे चाहत का टोन सुनकर गुस्सा आने लगा। उसने चाहत की तरफ देखा और सर्द में कहा, फिर तो तुम आकर मेरे पैर भी पकड़ोगी ना, तब भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। हाँ, ये हो सकता है फिर तुम्हें मुंबई में कोई और जॉब ना दे। चाहत ने आहान की बातों को सीरियसली नहीं लिया। उसने उसे परेशान करने के लिए कहा, चलो ये भी देख लेंगे, वैसे कल का दिन बीतने वाला है मिस्टर ओबेरॉय, एंड आई बेट यू कि मैं आपके पास नहीं आऊंगी, और आई बेट यू डॉल उसके लिए तुम जिंदगी भर पछताने वाली हो, आहान ने भौहें उठाकर सर्द आवाज में कहा। चाहत ने भले ही आहान की बातों को सीरियसली ना लिया हो, लेकिन आहान उस वक्त सच में सीरियस था। वो दोनों बातें कर रहे थे, उतने में चाहत का घर आ गया था। आहान ने उसे ड्रॉप किया और वहां से जाने को हुआ था। तभी चाहत कार की विंडो के पास झुकी और कहा, थैंक यू मिस्टर ओबेरॉय, और हाँ, मैं नहीं आने वाली। गुड बाय डॉल, जब तुमने सोच ही लिया है कि तुम नहीं आओगी तो शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, आहान ने जवाब दिया और गाड़ी स्टार्ट की। आहान वहां से चला गया और चाहत उसे जाते हुए देख रही थी। उस पर आहान के गुडबाय का भी कोई असर नहीं हुआ, तो वहीं गाड़ी चला रहे आहान को अपने सीने में दर्द महसूस होने लगा। उसके लिए चाहत को गुडबाय बोलना आसान नहीं था। आपको क्या लगता है, चाहत आहान के पास आएगी?